मेरे जगरी दोस्तों नमस्कार। आज 31 जुलाई 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं नीलू कुमारी, आपका गांव है प्रंचक, जिला नवादा बिहार से, और अभिषेक रंजन, आपका गांव है कस्तोली, जिला बेगूसराय बिहार से। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आपसे मार्क्स का जो सामाजिक विकास का सिद्धांत रहा है उस पर कुछ बातें करने जा रहा हूं। मैंने इस विषय को क्यों चुना है इस पर हम लोग बाद में बातें करेंगे। आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं, और ये जो घटनाएं हैं ये काफी अहम घटनाएं हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको दो बातें कहना चाहूंगा। मित्रों, पहली बात तो यह कि परसों मैं यूपीएससी का शायद आप लोगों को पोस्ट जो पिन कोड होता है वो देना भूल गया था, फिर मुझे एक स्टूडेंट ने इससे याद दिलाया और उन्होंने मुझे एक पिन कोड नंबर भी भेजा कि यह यूपीएससी का पिन कोड है, वो भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन कल मुझे फिर मेल मिले कि सर वो पिन कोड नंबर नहीं है, पिन कोड नंबर कुछ दूसरा है। एक विचित्र सी स्थिति यह हुई कि जो आखिरी में 1 है, चूंकि मैं वहां उपराष्ट्रपति भवन जो है आपकी यूपीएससी से मुश्किल से 200 मीटर ही दूरी पर होगा, एकदम पास में ही है। हम लोग लंच लेकर के और खासकर उपराष्ट्रपति भवन से यूपीएससी वगैरह के सामने घूमने निकलते थे, वो पेड़ों से ढका हुआ बहुत ही खूबसूरत एरिया है। तो मुझे लगा कि हाँ 01 होना चाहिए, मैंने भी उसे चेक नहीं किया। मित्रों, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। मैं आप लोगों को यूपीएससी का जो सही पिन कोड नंबर है अब वह बताने जा रहा हूं। ये मैंने चेक कर लिया है, प्लीज आप उसे नोट कर लें। यूपीएससी का पिन कोड नंबर है, बाकी एड्रेस सब वही है, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली, और पिन कोड नंबर है 110069। कुछ फ्रेंड्स ने मुझे सजेस्ट किया है कि सर क्या यूपीएससी को हम इससे संबंधित ईमेल भी भेज सकते हैं। बिल्कुल भेजिए, मतलब मैंने तो आपको केवल एक फॉर्मेट बताया है, बस पर्पज क्या है। पर्पज यह है कि हम अपनी समस्या से, जो वाकई में बहुत ही क्रॉनिक समस्या है और हमारे अपने भविष्य से और हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य से जुड़ा हुआ है, और हमारा यह भविष्य सच पूछे तो कहीं ना कहीं राष्ट्र के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है, उससे अवगत कराएं कि उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। आप पत्र भेजिए, आप मेल भेजिए, आप मिनिस्ट्री, आप जो पर्सनल एंड ट्रेनिंग है आप वहां भेजिए, बिल्कुल आप जितना भी इन सब संस्थानों को जो इससे जुड़े हुए हैं सूचित कर सकते हैं उन्हें सूचित कीजिए, क्योंकि हमारा जो पहला जो चरण होना चाहिए और सच पूछे तो जो एक डेमोक्रेटिक जो तरीका है वो यही है कि पहले हम अपनी समस्या बताएं, बातचीत करें, और मुझे पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से कुछ न कुछ होगा। और मित्रों, जैसे ही यह होगा आप विश्वास कीजिए हिंदी और भारतीय भाषाओं के लिए यह गेम चेंजिंग होगा, बिल्कुल खेल को बदल देने वाला या कह लीजिए उलट देने वाला। एक ही साल के अंदर अगर 2020 के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो हिंदी भाषा के हिंदी भाषा में ही आ गए तो आप देखेंगे कि जब 2021 का फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसमें आपको कितना सुखद परिणाम देखने को, जानने को और सुनने को मिलेगा। और डेफिनेटली यदि ऐसा हो सका तो ये आपके लिए बेहतर होगा, इसका श्रेय आपको मिलेगा, इसका लाभ आपको मिलेगा, और आप अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक बहुत अच्छे भविष्य की संभावनाओं का निर्माण अपने हाथों से, अपने प्रयासों से करेंगे। और यह क्या कोई कम बात है, कोई छोटी बात है, बहुत बड़ी बात होगी। मित्रों, तो आइए अब हम घटनाओं को, कुछ जो घटनाएं हैं उन्हें देखते हैं। दोस्तों, 3 तलाक पर बिल पारित हो गया है, तो मैं इसके लिए तो सच पूछिए तो पूरे देश को बधाई देना चाहूंगा। ये बहुत बड़ा काम हुआ है और वास्तव में ये बहुत ऐतिहासिक घटना है, और भविष्य इस दिन को एक ऐतिहासिक दिन के रूप में ही याद करेगा। दोस्तों, जब हम इस घटना को याद कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमें 2 व्यक्तियों को जरूर याद करना चाहिए। अखबारों में उनमें से एक महिला को याद किया गया है, वो है शाह बानो ही हैं जिन्होंने 1978 में, सोचिए कि कोर्ट में बकायदे जब उनको 3 तलाक के माध्यम से तलाक दे दिया गया था तो केस दायर किया था, और फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि नहीं, शाहबानों को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। अनफॉर्चुनेट ये था कि उस समय कांग्रेस की सरकार थी, अनफॉर्चुनेट मतलब ये नहीं कि कांग्रेस की सरकार थी, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अनफॉर्चुनेट घटना यह हुई कि उस समय जो भी सरकार थी आप कह लीजिए, उनको लगा कि इससे मुस्लिम समुदाय नाराज हो जाएगा, तो वो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के खिलाफ संसद में बकायदे विधेयक लेकर के आया और वो पारित हो गया और सुप्रीम कोर्ट का आदेश धरा का धरा रह गया। कल्पना कीजिए कि अगर 86 में यह हुआ, 86 में यह हो गया होता, तो आज सच में जो मुस्लिम समाज है और यहां तक कि टोटल भारतीय समाज है, उसमें कितनी ज्यादा चेतना आ गई होती और ये चेतना प्रगतिशीलता की होती। खैर, अब जो दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें हमें याद करना चाहिए और वो अभी हैं, आरिफ मोहम्मद खान साहब, मैं उनका बहुत ही जबरदस्त रूप से सम्मान करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं। वे उस समय कानून मंत्री थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का पक्ष लिया और चूंकि आप सरकार में हैं, आप सरकार के ही अधिनियम का विरोध कर रहे हैं, तो बकायदे उन्होंने इसके खिलाफ, आप सोच करके देखिए, सरकार जो अधिनियम लेकर के आई थी, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और सच पूछे तो उसके बाद से उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म भी हो गया। मैं उन्हें इसलिए भी अभी खासकर बधाई देना चाहूंगा कि मैं ये मान करके चलता हूं कि उन्होंने उस क्रांति की शुरुआत जिसे शाहबानों ने शुरू किया था, उन्होंने उसे प्रज्वलित कर दिया, एकदम से प्रज्वलित कर दिया। और मेरे पास कुछ दिनों पहले ही मेरे व्हाट्सएप पर आया था कि वो कहीं कुछ बात कर रहे थे, तो मैंने इस पर बहुत से ब्लॉग लिखे थे, पिछले साल से ये मामला चल रहा है, मैंने कई ब्लॉग इसको लेकर के लिखे एनडीटीवी के लिए, तो उसमें से एक ब्लॉग उनको बहुत अच्छा लगा था शायद, तो उन्होंने जगह जगह वो आर्टिकल भेजा था, मेरे नाम से ही भेजा था आरिफ मोहम्मद खान साहब ने। दोस्तों, हमें इन दो व्यक्तित्वों को डेफिनेटली इस समय याद करना चाहिए और बकायदे इन्हें प्रणाम निवेदित करना चाहिए इस बहुत बड़ी क्रांति के लिए। इसके बारे में अखबारों में बहुत बातें लिखी गई है, मैं उन पर नहीं जा रहा हूं। एक बात सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के नाम पर आपको दिलाना चाहूंगा कि आप सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट है ना, ये आपका नाम है, कि ये जो विधेयक है ये तीन तलाक विधेयक नहीं है, नाम सही होना चाहिए जब आप एग्जामिनेशन में लिख रहे हैं। तो ये जो विधेयक पारित हुआ है इसका नाम है मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019, है ना, तीन तलाक विधेयक मत लिखिएगा, यानी कि जो मुस्लिम महिला हैं विवाह संबंधी उनके जो अधिकार हैं उनकी रक्षा की जाए उससे संबंधित विधेयक है, राइट। तो आपको ये नाम याद होने चाहिए। इस विधेयक में क्या क्या व्यवस्था की गई है आज अखबारों में है और आप जानते होंगे, दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, इसी के साथ ही एक विधेयक और पारित हुआ है, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट, दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला तो यह है कि अब उपभोक्ता संरक्षण के लिए भी एक अलग से अभिकरण बना दिया जाएगा, है ना, यानी कि अथॉरिटी बना दी जाएगी, अपीलिंग अथॉरिटी, जिसे आप कह लीजिए कि न्यायाधिकरण जैसा कुछ बना दिया जाएगा, है ना, जहां की आप अपील कर सके। और दूसरी बात यह है कि जो उपभोक्ता के मामले होंगे उनका निपटारा समयबद्ध तरीके से होगा, कि इतने दिनों में इसका निपटारा हो ही जाना चाहिए, तो यह भी उपभोक्ता संरक्षण की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है। इसके बाद श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी से संबंधित, दोस्तों, एक संहिता पारित की गई है, वो है मजदूरी विधेयक संहिता। इसकी डिटेल्स अभी हम देखेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका यह है कि मजदूर चाहे कहीं भी हो, असंगठित क्षेत्र में हमारे सबसे ज्यादा मजदूर है, 95% हमारे जो लेबर है असंगठित क्षेत्र में है। असंगठित क्षेत्र का आप जानते हैं मतलब जो ऑर्गेनाइज नहीं है, जैसे कि कहीं मकान बन रहा है वहां मजदूर काम कर रहे हैं, ईटा भट्ठा में मजदूर काम कर रहे हैं, घर में महिलाएं काम कर रही हैं, ठेला कुछ लोग चला रहे हैं, तो ये असंगठित क्षेत्र है, इनके लिए भी न्यूनतम मजदूरी संबंधी एक संहिता संसद ने मंजूर की है। तो ये तीन महत्वपूर्ण मित्रों घटनाएं थी। अब मैं आता हूं मार्क्स का सामाजिक विकास का सिद्धांत इस विषय पर। दोस्तों, जानबूझकर के मैंने इस विषय को चुना है और सच पूछे तो इसका जो संबंध है वो अभी जो तीन तलाक पर विधेयक पारित हुआ है इसी से ही है, कि समाज में परिवर्तन आते कैसे हैं, इसी को ही मैंने कहा कि सामाजिक विकास का सिद्धांत है ना। इसको चूंकि समय कम है मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपके सामने रखना चाहूंगा। देखिए, मार्क्स ने क्या कहा था, मार्क्स ने कहा था कि जो हमारा पूरा का पूरा अब तक का समाज है या जो इतिहास है वो कैसे आगे बढ़ा है। तो उन्होंने कहा कि समाज में हमेशा दो अलग अलग वर्ग होते हैं, जिससे उन्होंने कहा कि शोषक वर्ग और शोषित वर्ग, एक वर्ग जो शोषण करता है, दूसरा वर्ग जिसका शोषण किया जाता है। अगर हम इसे तीन तलाक पर अप्लाई कर दें, और करना ही चाहिए आपको, ये आपके दिमाग को एनलार्ज करता है, तो यहां हमें दो वर्ग दिखाई देंगे। एक तो यह है कि ऐसे लोग, ऐसा वर्ग जिनको तीन तलाक से लाभ हो रहा था, और दूसरा वर्ग जो तीन तलाक से शोषित हो रहा था, राइट। तो जिन कौन लाभ हो रहा था, इसके बारे में आपने डिस्कशन वगैरह में सुना होगा कि जो धार्मिक वर्ग था, धार्मिक वर्ग ही हम कह ले, जो मुल्ला वर्ग था, वो इसका लाभ ले रहा था, है ना। वो धर्म के अपने ढंग से व्याख्या करके लोगों को बरगला करके, और ये कह रहा था कि नहीं नहीं ये धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, जबकि आप देखिए कि पाकिस्तान तो एक इस्लामिक देश है, वहां तीन तलाक नहीं है। बांग्लादेश, पहले वो पाकिस्तान का हिस्सा था, वहां भी नहीं है, और यहां जो वहां जो लोग गए हैं वो हिंदुस्तान से ही गए हैं, वहां तीन तलाक नहीं है, और बेचारे जो यहां रह गए वो तीन तलाक के इस अमानवीय कृत्य को आप कह लीजिए कि बर्दाश्त करें, महिलाओं के लिए तो एक अमानवीय है। अब तीन तलाक बोल दीजिए, महिला खत्म, एक मिनट दो मिनट में पता लगा कि उसकी तो जिंदगी सूनी हो गई, अब उसके सामने कोई आर्थिक सहारा नहीं है। तो अगर हम उस रूप में देखें, मानवता की दृष्टि से देखें, अगर हम धर्म ग्रंथों को और पर्सनल लॉ को हटा दें, तो सुनकर के ही बड़ा अजीब सा लगता है। तो उन्होंने अपने ढंग से व्याख्या की। दुनिया के 22 मुस्लिम राष्ट्र हैं, वो भी उसी कुरान की बात करते हैं, उन्हीं परंपराओं की बात करते हैं, उन संहिताओं की बात करते हैं, उन्होंने इसे खत्म कर दिया है। इसका मतलब है कि यहां भी दो वर्ग हैं, एक वर्ग जिसको जिससे लाभ हो रहा है, दूसरा वर्ग जिससे इसको हानि हो रही है, और इन दोनों में लगातार संघर्ष चलता रहता है, लगातार संघर्ष चलता रहता है। सीधी सी बात है कि जिनको लाभ हो रहा है वो आसानी से झुकेंगे नहीं, लेकिन सवाल यह है कि जिनको नुकसान हो रहा है वो अपने संघर्ष में कितने टिके रह सकते हैं। और याद रखिए, ये बात केवल मुस्लिम समाज की नहीं है, ये संपूर्ण समाज की है। दोस्तों, ऐसा नहीं कि भारत में जब हिंदुओं में जब सती प्रथा को समाप्त किया गया, या जब बाल विवाह पर जब रोक लगे, तो ये आसानी से लग गए थे। बिल्कुल घटनाएं इसी क्रम में घट रही थी। राजा राम मोहन राय और ईश्वरचंद विद्यासागर के सामने आपको क्या लगता है कि रास्ते बहुत आसान थे? उन्होंने सरकार से कह दिया कि आप कानून पारित कर दीजिए, और सरकार ने आराम से कानून पारित कर दिया था। क्या उस समय का जो इस तरह से रूढ़िवादी समाज था, उन्होंने इसका विरोध नहीं किया था? इन पर भी पत्थर फेंके गए थे, इनके खिलाफ प्रदर्शन किए गए थे, इनको समाज से बहिष्कृत किया गया था। ये सारी चीजें इन लोगों ने भी झेली थी, और ये सब हिंदू समाज के लोग थे। तो ये समाज सभी लगभग लगभग एक जैसे होते हैं, और उसको समराइज कर दिया कार्ल मार्क्स ने कि शोषक वर्ग और शोषित वर्ग, इनमें लगातार संघर्ष चलता रहता है, लगातार संघर्ष चलता रहता है, और इस संघर्ष के प्रोसेस में ही समाज में परिवर्तन आता है। तो दोस्तों, खासकर मुझे एक अवसर मिला था कि मैं तीन तलाक को लेकर के सामाजिक परिवर्तन की एक छोटी सी झलक आपको दिखा सकूं। तो ये छोटी सी झलक मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है, और समाज का जब भी परिवर्तन करने की जब बात आती है, या कोई आपको घटना इस तरह की दिखाई देती है, पढ़ने में आती है, तो आप कार्ल मार्क्स को याद कर लीजिएगा, और उनका जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है उसे आपको पढ़ भी लेना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि उनका ये जो सिद्धांत है, जो समाज से जुड़े हुए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे, उनको समझने में बहुत मदद मिलेगी, और सच पूछिए तो आप अपने उत्तर भी बहुत तार्किक तरीके से देने की स्थिति में हो सकेंगे। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स में आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप देख लेंगे। करेंट कंटेंट के तहत एक बहुत अच्छा आज आपको आर्टिकल प्रोवाइड किया जा रहा है, अफ्रीका भारत संबंधों में कसावट की जरूरत, इंडियन एक्सप्रेस में छपा था, और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि सन 2015 में सीधे सीधे भारत अफ्रीका संबंधों पर मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। चूंकि अब उसको 4 साल हो चुके हैं, तो संभावना है कि फिर से पूछा जाए, क्योंकि भारत अफ्रीका के साथ अपने संबंधों को विकसित करने के मामलों में बहुत ही प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रहा है। दोस्तों, अब मैं आता हूं ईमेल पर। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: प्रेम शिंदे, श्यामू यादव, रोहित सबधाणी, शशि यादव, सगुन श्रीमाली, आशीष श्रीवास्तव गोरखपुर विश्वविद्यालय से, सूरज कुमार कटिहार बिहार से, संजीवनी श्रीवास्तव जबलपुर मध्य प्रदेश से, अरविंद कुमार यादव गाजीपुर उत्तर प्रदेश से, और धर्मेंद्र मवाई, आप सबका बहुत बहुत आभार। और मित्रों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करने की आप सबसे विनम्र इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।